سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا سوال کر سوال آدھا علم ہے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلیک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلیک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہ مردوان مختلف موقعوں پر حاضر ہوتے اور پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دین سیکھتے, سوالات کرتے, مختلف چیزوں کے بارے میں پوچھتے اور پھر انہیں اپنی زندگی کے اندر عملی طور پر شامل کر لیا کرتے تھے. آج ہم اپنے پروگرام میں کچھ ایسے ہی سوالات اور ان کے جوابات جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے, یعنی صحابہ کرام علیہ مردوان کے سوالات اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جوابات, یہ شامل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. پہلے درود پاک کی ایک فضیلت شامل کرتے ہیں کہ درود پاک پڑھنا یقیناً بہت بڑی سعادت مندی کا باعث ہے. جو کوئی درود و سلام پڑھنے کو اپنی عادت, اپنا وتیرہ بنا لیتا ہے, اپنا معمول بنا لیتا ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس بندے پر بے حد مہربانی اور شفقت فرماتے ہیں, اجر اور ثواب اس کے علاوہ ہے. ایک بزرگ حضرت محمود کردی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ اپنی کتاب الباقیات الصالحات میں فرماتے ہیں, فرماتے ایک رات جب میں سویا تو میری قسمت کا ستارہ چمک اٹھا. فرماتے ہیں جب میں سویا تو میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کا شرف پایا. اللہ اکبر. ایسے بہت سارے خوش نصیب ہیں جنہوں نے درود پاک پڑھنے کو اپنی عادت بنایا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام میرے خواب میں تشریف لائے اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کمال مہربانی اور شفقت فرماتے ہوئے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا. سبحان اللہ. اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکثروا علی من الصلاح, ارشاد فرمایا مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھو, خوب درود پاک پڑھو. پھر ارشاد فرمایا حضرت محمود کردی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر نبی پاک علیہ السلام نے مجھے اپنی رضا کی, اللہ کریم کی رضا کی خوشخبری سنائی کہ اللہ کریم بھی تم سے راضی ہے, نبی پاک علیہ السلام بھی راضی ہیں. فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی اتنی شفقت میں نے دیکھی تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یہ خواب میں رو رہے ہیں, فرما رہے میں خواب دیکھ رہا تھا, حضور تشریف لائے, یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا اور خواب میں میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. ارشاد فرماتے ہیں مجھے اپنی قسمت پر رشک آ رہا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اتنی مہربانی فرمائی, اتنی شفقت فرمائی. فرماتے ہیں میں نے جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز دیکھا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں بھی آنسو چمک رہے تھے. فرماتے ہیں کہ اتنے میری آنکھ کھل گئی, جب میں جاگا تو فرماتے ہیں میرے رخسار پر آنسو بہ رہے تھے. وہ جو خواب میں آنسو بہے تھے, ارشاد فرماتے ہیں یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کمال درجے کی عنایت ہے. خواب میں حضور کا تشریف لانا ایسے ہی ہے جیسے حقیقت میں بندہ جو ہے اس کے پاس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کرم فرمائے, کیونکہ خود فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مر رآنی فی المنامی فقد رأى الحق, اور دوسری بات میں فرمایا لا یتمثل الشیطان بی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا, اس نے حق دیکھا. اور پھر فرمایا شیطان میری صورت میں آ سکتا نہیں. حضرت محمود کردی رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس کے بعد جو ہے نا نبی پاک علیہ السلام کے مواجہ شریف پر حاضر ہوا. फरमाते हैं कि मैंने वहां नबी पाक अलैहि सलाम की बारगाह में सलाम अर्ज किया, मुख्तलिफ बशारतें जो हैं वो मुझे वहां मिली। फरमाते हैं कि अभी मैं वहां खड़ा हुआ था मवाजा शरीफ पर एन बेदारी की हालत में, पहले नबी पाक अलैहि सलाम को ख्वाब में देखा, फरमाते अब मैंने एन बेदारी की आलम में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिही वसल्लम की जबान अकदस से अपने वो जो मैंने सलाम किया था, इरशाद फरमाते हैं मैंने हुजूर की जबान अकदस से उस सलाम का जवाब सुना। खुद नबी पाक अलैहि सलाम इरशाद फरमा और बेदारी की हालत में फरमाते हैं और मुझे इस बात का यकीन कामिल हो गया कि नबी पाक अलैहि सलाम न सिर्फ अपने रोजे अतहर में हयात हैं बल्कि मुसलमानों के सलाम का जवाब भी इरशाद फरमाते हैं। सल्लु अलैल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातं व सलामन अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें भी चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में, अपने मामूलात में, अपने शबो रोज में नबी पाक अलैहि सलातु वसलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ने को शामिल कर लें। इंशाअल्लाह रहमान इसकी बरकतें दुनिया में भी नसीब होंगी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह इसकी बरकतें देखने को मिलेंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातं व सलामन अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिही वसल्लम के बहुत प्यारे सहाबी हजरत सैयदुना अबू जर गिफारी रदी अल्लाह ताला अन्हो, आप रिवायत फरमाते हैं, फरमाते हैं मैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काबतुल्ला शरीफ के साए में तशरीफ फरमा थे, यानी काबा शरीफ के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए और नबी पाक अलैहि सलातु वसलाम इरशाद फरमा रहे थे। हुजूर ने फरमाया रब काबा की कसम वो सबसे ज्यादा खसारा पाने वाले हैं, सबसे ज्यादा नुकसान पाने वाले हैं वो लोग। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया कि वो लोग बहुत खसारा पाने वाले हैं, सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले लोग हैं। हजरत सैयदना अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वो कौन लोग हैं जिनके बारे में आप इरशाद फरमा रहे हैं वो लोग सबसे ज्यादा खसारा पाने वाले हैं। सवाल किया हजरत सैयदना अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मदनी चैनल के नाज़रीन गौर से सुनिए, कौन है वो लोग जो सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले हैं, सबसे ज्यादा खसारा पाने वाले हैं। इरशाद फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वो ज्यादा माल वाले हैं, ज्यादा माल वाले हैं। फिर दाएं बाएं आगे पीछे यूं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इशारा करते हुए फरमाया, फरमाया सिवाय इनके जो इस तरह और इस तरह माल खर्च करते हैं। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फरमाया उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है। अल्लाह अकबर। फरमाया जो भी ऐसे ऊंट या गाय या बकरियां छोड़कर मरा, उस जमाने में चूंकि लोग कसरत के साथ जानवर पाला करते थे और ऐसे जानवर जैसे गाय है, भैंस है, ऊंट है, बकरियां हैं, इनमें भी शरीयत ने जकात मुकरर की है। जी हां, इनकी तादाद भी मुकरर है और इनका निसाब भी मुकरर है और इनकी कुछ शरायत भी है, यानी ऐसे नहीं मुतलकन किसी ने गाय और भैंस पाल रखी हो और एक दो पर जकात भी फर्ज नहीं है बल्कि इनकी मखसूस तादाद है, उसी पर जकात फर्ज है और उसकी शरायत भी है कि इस तरह के जानवर होंगे जो कि बहार शरीद वगैरह दीगर फिक की किताबों से उसके बारे में मालूम हासिल की जा सकती है। तो उनका निसाब भी मुकर्रर है, जब जानवरों की तादाद निसाब को पहुंचेगी, शरायत पूरी होंगी, तो फिर इनमें से जकात अदा करना होगी। उस जमाने में चूंकि लोग जानवर बहुत ज्यादा पाला करते थे तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जानवरों की मिसाल दी। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फरमाया जो ऐसे ऊंट गाय या बकरियां छोड़कर मरा जिनकी उसने जकात ना दी थी, इरशाद फरमाया तो ये जानवर कियामत के दिन पहले से ज्यादा बड़े और मोटे होकर आएंगे, फरबा होंगे, इरशाद फरमाया बड़े बड़े, और अपने मालिक को सींगों से मारेंगे, और इरशाद फरमाया सींगों से उसको मारेंगे और खुरों से पैरों से उसे रोंद देंगे, उसके ऊपर चलेंगे, दौड़ेंगे, और इरशाद फरमाया जब एक गुजरेगा तो पहले वाला फिर रोंदने के लिए आ जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि एक दफा गुजर गया खत्म। इरशाद फरमाया एक दफा गुजरेगा फिर वो दोबारा फिर उसके ऊपर से गुजरेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरमाया और लोगों के दरमियान फैसला होने तक उसे यूं ही अजाब होता रहेगा। मदनी चैनल के नाज़रीन गौर फरमाइए, यहां नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अगरचे जानवरों की मिसाल दी, जानवरों का जिक्र फरमाया, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आदमी माल की ज़कात ना देगा, मेरे पास तो ना जानवर है, ना ऊंट है, ना गाय है, ना बैल है, और ना बकरियां हैं, ना भेड़े हैं, तो लिहाजा मैं तो ज़कात नहीं देता। माल है तो याद रखिए ये माल भी सिक्कों की सूरत में गर्म करके जो आदमी माल की ज़कात नहीं देगा उस बंदे के जिस्म से तपाया जाएगा, जिस्म पर दागा जाएगा, वो सिक्के गर्म कर करके उस बंदे के साथ जो है वो लगाए जाएंगे, वो आग बन चुके होंगे। तो इसलिए माल की ज़कात अदा न करना, ये लोग भी खसारा पाने वाले हैं, और इसी तरह जानवरों की ज़कात न देने वाले लोग भी खसारा पाने वाले हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, जिन लोगों को अल्लाह तबारक तआला ने माल अता फरमाया है, याद रखिए माल का होना, महज माल का होना ही बुरा नहीं है, लेकिन जो हुकूक अल्लाह तबारक तआला ने माल में मुकर्रर किए हैं, ज़कात अदा करना, दीगर जो और वाजिबात हैं, फराइज हैं, उन्हें न देना और सिर्फ माल को समेटते रहना, ये लोग खसारा पाने वाले और सबसे बढ़कर नुकसान उठाने वाले लोग हैं। इसलिए हमें चाहिए जिन्हें अल्लाह तबारक व ताला ने माल अता किया है उन्हें चाहिए अपने माल की पूरी ज़कात अदा करें, कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन हिसाब के अंदर और फिर इस अजाब के अंदर वो मुतला कर दिए जाएं कि क़यामत के दिन बंदे से सवाल होगा जो माल अल्लाह करीम ने अता किया है वो पहली बात तो यह है कि कमाने का अंदाज भी दुरुस्त होना चाहिए, जब दुरुस्त तौर पर कमा लिया है तो अब अगर वो निसाब को पहुंच गया है तो फिर उससे पूरी ज़कात अदा करनी चाहिए ईमानदारी के साथ और खुश दिली के साथ कि अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में खुश दिली के साथ जब पेश करेगा बंदा तो अल्लाह तबारक व ताला उसे कबूल भी फरमाएगा, अजर भी अता फरमाएगा, सवाब भी अता फरमाएगा उस पर। तो इस एतबार से हमें बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत है। जो लोग, और बाज़ों का ऐसा होता है घर के अंदर खवातीन जो है उनके पास सोना होता है, जेवर, ये तो पहनने के लिए है, इस पर ज़कात कैसी? ऐसी बात नहीं है, पहनने का है, इस्तेमाल करने का है, या आपने रखा हुआ है सारी जिंदगी में कभी नहीं पहना, लेकिन है जो बंदा उसका मालिक, जो खातून उसकी मालिक है, अगर वो निसाब को पहुंचता है तो उस पर ज़कात फर्ज है। इसलिए हमें खुद से अपने आप से फैसला करने के बजाय उलमा की जानिब, मुफ्तियान इकराम की जानिब रुजू करना चाहिए। दारुलिफ्ता अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मदनी चैनल पर उसके प्रोग्राम्स भी आते हैं, आप उसके अंदर भी सवालात करके अपने जो है वो मालूमात हासिल कर सकते हैं, और इसी तरह खुद से जाकर भी दारुलिफ्ता अहले सुन्नत के अंदर जो है वो आप अपने मसाइल को हल करवा सकते हैं, फोन के जरिए, कॉल के जरिए भी आप अपने सवालात के जवाबात हासिल कर सकते हैं। तो हमें इस मामले में हरगिज हरगिज सुस्ती से काम नहीं लेना चाहिए, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो इन खसारा पाने वाले लोगों के बारे में फरमाया है, अल्लाह तबारक व ताला हमें उन खसारा पाने वाले लोगों के साए से भी महफूज और मामून फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन बढ़ते हैं एक और सवाल की जानिब, जो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से आप अलैहिस्सलाम के एक और सहाबी ने पूछा। वो सवाल क्या था? हजरत सैयदुना जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, फरमाते हैं कि एक आदमी नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मल मूजिबतान, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, दो वाजिब करने वाली चीजें कौन सी हैं? दो वाजिब करने वाली चीजें कौन सी हैं? अब उन्होंने यह नहीं पूछा क्या वाजिब करने वाली, बल्कि मुतलकन एक बात की, मल मूजिबतान, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो वाजिब करने वाली कौन सी चीजें हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने वो इल्म अता फरमाया है, वो इल्म अता फरमाया है कि कायनात में न किसी और नबी को ऐसा इल्म अता किया, न किसी और रसूल को अता फरमाया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम जानते हैं बंदा क्या चीज पूछना चाह रहा है, अर्ज की, या रसूलल्लाह, दो वाजिब करने वाली चीजें कौन सी हैं? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फरमाया मम माता, ला युशरिक बिल्लाह शैअन दाखल अल जन्ना। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फरमाया जो आदमी इस हाल में दुनिया से गया, मम माता, जो इस हाल में फौत हुआ, ला युशरिक बिल्लाह शैअन, इरशाद फरमाया जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी भी चीज को शरीक नहीं ठहराता था, यानी शिर्क से जो बेजार था, शिर्क से जो पाक था, इरशाद फरमाया दाखल अल जन्ना, वो जन्नत में जाएगा। ये पूछ रहे थे दो चीजों के बारे में कि या रसूलल्लाह वाजिब कर देने वाली दो चीजें कौन सी हैं, एक चीज ये और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वमम माता युशरिक बिल्लाह शैअन, इरशाद फरमाया दाखल नार, इरशाद फरमाया नबी पाक अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आदमी इस हाल में दुनिया से गया, यूं मरा कैसे, युशरिक बिल्लाह शैअन, इरशाद फरमाया किसी जरा सी चीज को भी अल्लाह का शरीक ठहराता था, किसी जरा सी चीज को भी अल्लाह का शरीक ठहराता था, इरशाद फरमाया दखल नार, ऐसा आदमी दोजख में डाल दिया जाएगा, ऐसा आदमी दोजख में जाएगा इरशाद फरमाया। ये वो दो चीजें थी जो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि वाजिब कर देने वाली ये दो चीजें हैं, शिर्क से बेजार रहना, तौहीद की गवाही देना, अल्लाह तबारक तआला को एक मानना, ये वो चीज है जो बंदे पर जन्नत को वाजिब कर देती है, यानी वो आदमी जन्नत में जाएगा। यकीनन कलमा तैयबा पढ़ना, अल्लाह तबारक तआला की तौहीद की गवाही देना, ये वो अमल है जो बंदे को जन्नत में दाखिल कर देगा। और इसी तरह शिर्क वो बड़ा गुनाह है, वो जुल्म अजीम है, वो बड़ा जुल्म है कि जो बंदे पर दोजख को लाजिम कर देता है, वाजिब कर देता है। इसलिए हमें चाहिए हर ऐसे काम से, हर ऐसे अमल से अपने आप को दूर रखें जो बंदे को शिर्क की तरफ ले जाने वाला है, और जो इस्लाम ईमान की गवाही देने वाला जो अमल है, इसको बंदे को चाहिए ये दोहराता रहे, कलमा तैयबा पढ़ता रहे, शहादत देता रहे, यकीनन इसका अजर है, सवाब है। मदनी चैनल के नाज़रीन, यकीनन अमल में इखलास और अल्लाह तबारक तआला की रजा, ये वो काम है जो छोटे अमल को भी अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में कबूलियत का दर्जा दिलवा देती है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर इस चीज की अहमियत को उजागर फरमाया। एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप रिवायत फरमाते हैं, फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फरमाया तऊज़ु बिल्लाहि मिन जुब्बिल हुज़्न, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फरमाया कि जुब्बुल हुज़्न से अल्लाह की पनाह मांगो, जुब्बुल हुज़्न से अल्लाह की पनाह मांगो। सहाबा किराम अलैहि मुर्दवान ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये जुब्बुल हुज़्न क्या है? या रसूलल्लाह वमा जुब्बुल हुज़्न, या रसूलल्लाह ये जुब्बुल हुज़्न क्या है? हालांकि सहाबा किराम अलैहि मुर्दवान अरबी समझने वाले, अरबी बोलने वाले और अरब थे, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक बात जिक्र फरमाई, वो लोग यहां इबरत हासिल करें, उनके लिए दर्स है, सबक है, जो ये कहते हैं बस अरबी सीख लो कुरान समझ में आ जाएगा, अरबी सीख लो, अरबी बोलना आ जाए, तकल्लुम आ जाए, हदीस पाक समझ लेगा बंदा, बस दो चार कायदे तो हैं वो सीख ले आदमी तो पता चल जाता है। ये वो सहाबे किराम अलैहि मुर्दवान है जिनकी जबान ही अरबी है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला वसल्लम की बारगाह में दिन रात रहने वाले हैं, इनका आलम यह है, हुजूर ने एक बात इरशाद फरमाई, सहाबा कहते हैं या रसूलल्लाह इसके बारे में बताएं ये क्या है, हालांकि वो अरबी बोलने वाले, अरबी समझने वाले। तो तकल्लुम, अरबी बोल लेना, ये कुछ और है, कुरान और हदीस पाक की समझ ये कुछ और है, उसके लिए कुछ तकाजे हैं, उनको समझने के लिए कुछ उलूम का पाया जाना जरूरी है, जब तक वो ना हो बंदा समझ नहीं सकता। सहाबे किराम अलैहि मुर्दवान ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह ये इरशाद फरमाइए ये जुब्बुल हुज़्न क्या है? अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरमाया वादिन फी जहन्नम, इरशाद फरमाया ये जुब्बुल हुज़्न जहन्नम में एक वादी है, जहन्नम में एक वादी है, और उसमें है क्या? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फरमाया ये ऐसी वादी है कि खुद दोजख, खुद जहन्नम इस वादी से एक दिन में 100 मरतबा पनाह मांगता है। इरशाद फरमाया इतनी खतरनाक और सख्त वादी है ये दोजख के अंदर, जिससे खुद जहन्नम भी पनाह मांगती है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हमने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमन यदखुलुहु, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इसमें किसे दाखिल किया जाएगा? जहन्नम की ये ऐसी वादी है, इसमें किसे डाला जाएगा? नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाया वो बंदा, वो कारी जो अपने आमाल में दिखावा और रिया करता है, जो रियाकारी के लिए आमाल करता है, कुरान पढ़ रहा है या दीगर और काम जो कर रहा है दिखावे के लिए, लोग मुझे अच्छा कहें, मेरी तारीफ की जाए, मेरी वाह वाह की जाए, लोग जो है वो मेरे अमल पर, मेरे कुरान पढ़ने पर, मेरे काम करने पर, मेरे नेकियां करने पर मेरी तारीफ करें, तो इरशाद फरमाया ऐसा आदमी, ऐसे लोग जो आमाल में दिखावा करते हैं, रियाकारी करते हैं, इरशाद फरमाया ये इस दोजख के इस जुब्बुल हुज्न के अंदर डाले जाएंगे। हम अल्लाह तबारक व तआला से पनाह मांगते हैं और अल्लाह करीम की बारगाह में सवाल करते हैं कि वो हमें इखलास की दौलत नसीब फरमाए, अल्लाह तबारक तआला रियाकारी से बचाए और हर ऐसे अमल से जो बंदे को रियाकारी की तरफ ले जाने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला दिल में कल्ब में भी इखलास नसीब फरमाए और अपने जाहिर बातिन को भी सुथरा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम।
सवाल है सवाल करके चाबिल की कहा गया इसे कहा गया।